नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रखने के लिए 7 देशों से युद्धपोत भेजने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपात भंडार से बड़ी मात्रा में तेल जारी करेंगे और 98 अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। और अब समाचार विस्तार से। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने लगभग 7 देशों से ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने में मदद के लिए युद्धपोत भेजने का आग्रह किया है। ये जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन मार्ग है जहां से विश्व के 20% तेल का व्यापार होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका की तुलना में अन्य देश तेल के लिए इस मार्ग पर अधिक निर्भर हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा था कि कई देशों ने ईरान से अपने जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग का अनुरोध किया है और कुछ देशों के जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका के साथ बातचीत नहीं करना चाहेगा। उन्होंने युद्ध के लिए अमरीका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आज 17वां दिन है। पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों ने नए हमलों की सूचना भी दी है। दुबई में एक ड्रोन हमले के कारण ईंधन टैंक में आग लगने के चलते उड़ानें कुछ समय के लिए निलंबित कर दी गईं। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस युद्ध में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के अनुसार ईरान में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों में खाड़ी देशों और इसराइल में भी नागरिक मारे गए हैं। इसराइल में ईरानी हमलों से तेल अवीव क्षेत्र में 12 लोग मारे गए हैं और कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए झूठी खबरें फैला रहा है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान फर्जी हमले दिखाने के लिए एआई से तैयार तस्वीरों का भी सहारा ले रहा है। उन्होंने कुछ अमरीकी मीडिया एजेंसियों पर भी गलत जानकारियां देने का आरोप लगाया और कहा कि झूठी खबरें फैलाने वाली एजेंसियों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसराइल, अमरीका और ईरान के बीच जारी युद्ध से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस वहां के लिए और वहां से 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। इनमें 10 उड़ान देश के विभिन्न शहरों और जेद्दा के बीच जबकि 12 उड़ानें भारत और मस्कट के बीच परिचालित होंगी। एक रिपोर्ट।
एयर इंडिया ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि दिल्ली और मुंबई से वापसी की उड़ानें परिचालित होंगी जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मैंगलोर से एक एक उड़ान चलाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए और मस्कट से 12 उड़ानें परिचालित करेगा। इसके अलावा दिल्ली, कन्नूर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम से एक एक उड़ान और कोची से 2 उड़ानों का परिचालन होगा। स्पाइस जेट कंपनी भी संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा से भारत के लिए और दुबई से पुणे के लिए विशेष उड़ानें चला रही है। वहीं कतर एयरवेज भी अगले 2 दिनों में भारत के लिए 3 और उड़ानें संचालित करेगा। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ये उड़ानें कतर से नई दिल्ली, मुंबई और कोची के लिए होंगी। कतर एयरवेज से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्री एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या अपने ट्रेवल एजेंट से संपर्क करके टिकट बुक कर सकते हैं और नवीनतम उड़ान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आज तड़के ड्रोन से हमला हुआ जिससे ईंधन भंडारण सुविधाओं के पास भीषण आग लग गई। इस हमले को देखते हुए उड़ान संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। आपातकालीन सेवाओं को फौरन घटनास्थल पर भेजा गया। दुबई मीडिया कार्यालय ने हमले की पुष्टि की है। आग पर कुछ ही घंटों में काबू पा लिया गया। दुबई नागरिक सुरक्षा के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि इस घटना की वजह से हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट।
हाल ही में अमरीका द्वारा ईरान के कच्चे तेल निर्यात के प्रमुख केंद्र खारक द्वीप पर किए गए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये ड्रोन हमला हुआ है। ईरान के अधिकारियों ने पहले ही अमरीकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुई ये घटना इसी व्यापक प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि ईरान ने संकेत दिया है कि वो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने में सक्षम है, जबकि संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसके सदस्य देश वैश्विक संकट से निपटने के लिए अपने आपात भंडार से बड़ी मात्रा में तेल जारी करेंगे। एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा कि एशिया और ओशेनिया देश तत्काल तेल जारी करना शुरू करेंगे, जबकि यूरोप और अमरीका के आपात भंडार से आपूर्ति इस महीने के अंत तक शुरू होगी। इस आपात उपाय से तेल की वैश्विक आपूर्ति बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की घोषणा की है। यह मात्रा वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एजेंसी द्वारा जारी की गई मात्रा के दोगुने से भी ज्यादा है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रसल्स में साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मुलाकात। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ही नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के उपायों और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत के संबंधों को मजबूत करने में साइप्रस के सहयोग समर्थन की भी सराहना की है। कांगो गणराज्य में कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है। परिणाम 2 सप्ताह में आने की उम्मीद है। 82 वर्षीय राष्ट्रपति डेनिस ससाओ निंगेसो लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का समापन लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हो गया है। हास्य कलाकार और टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता कॉनन ओब्रायन ने लगातार दूसरे साल ऑस्कर की मेजबानी की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लियोनार्डो द कैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। इसी फिल्म के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हैमनेट में अभिनय के लिए जेसी बकले को मिला। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार के पॉप बैंड डेमन हंटर्स के गीत गोल्डन को दिया गया। इस समारोह में प्रियंका चोपड़ा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, एनी हैथवे और जेवियर बारडेम सहित कई बड़े सितारे शामिल हुए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। चंद्रिका पुजारी ने 51 किलो भार के वर्ग में उज्बेकिस्तान की मार्दोनोवा नाजोकट को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। गुंजन ने 48 किलो में और जॉयश्री ने 54 किलो में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि एल अम्बेडकर मितेई ने 50 किलो में रजत पदक अपने नाम किया। राधामणि लोंगजाम ने 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखने के लिए 7 देशों से युद्धपोत भेजने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपात भंडार से बड़ी मात्रा में तेल जारी करेंगे और 98 अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।